फीलिंग्स, आस्था का गिल्ट। रौनक और एंजल थोड़ी देर बाद अपने बालों में कंघी करने के इरादे से कमरे में जाने लगी, लेकिन उन्हें कमरे के बाहर से ही सुमित और राधिका की सिडक्टिव आवाज़ सुनाई दी तो दोनों ही शर्म के मारे लाल हो गईं और वहां से भाग गईं। अब आगे एंजल और रौनक इस तरह भाग रही थी मानो उनके पीछे किसी ने जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों। रौनक भागते हुए आहान से टकरा गई। इससे पहले कि रौनक गिर पाती, आहान ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया। कुछ पल दोनों के बीच आंखों का संपर्क हुआ। एंजल आहान और रौनक को एक साथ देखकर वहां से निकल गई। तभी आहान रौनक के कमर से पकड़कर उसे सीधा करते हुए बोला, क्या बात है, क्यों प्रीति उषा बन रही हो, इतनी तेज दौड़ क्यों लगा रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? रौनक को समझ नहीं आया कि वो आहान को क्या जवाब दे। फिर वो बात बदलते हुए नजरें चुराकर बोली, मैं तो अपने रास्ते जा रही थी, तुम ही मेरे रास्ते में आ गए हो। रौनक की इस बात को सुनकर आहान हैरान हो गया। एक तो वो खुद तेजी से दौड़ लगा रही थी, ऊपर से उसे बातें सुना रही है। लेकिन फिलहाल वो एक जरूरी काम से जा रहा था, इसलिए उसने रौनक से ज्यादा बात नहीं की और वहां से चला गया। वहीं एंजल के कानों में बार बार राधिका और सुमित की आवाज गूंज रही थी। उसके मन के भाव इस वक्त उथल पुथल हो गए थे। वो अविनाश का साथ चाहती थी, वो भी अविनाश से प्यार करती थी, लेकिन शायद उसकी किस्मत में अभी अविनाश का प्यार नहीं था। इसलिए एंजल ने कोशिश की और एक फोन कॉल के बहाने से वो अविनाश के कमरे की ओर चली गई। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया इस वक्त आकाश, सुमित और ध्रुव के साथ मौजूद था। अरमान आहान की ओर देखकर बोला, बोलो क्या खबर है? अगले पल आहान ने कहना शुरू किया, हमने सारी जगह का पता लगवा लिया है और दुर्जन सिंह आस्था भाभी का मुंह बोला चाचा है, साथ ही साथ उसकी नानी माँ के घर पर एक गंदी नज़र है। जब पहले आस्था और नानी माँ गाँव में रहा करती थीं, तब दुर्जन सिंह कितनी ही बार उन्हें धमकी दे चुका था और इस घर को कई बार खाली करने के लिए बोल चुका था। और इतना ही नहीं, हमें एक बात बड़ी अजीब लगी कि गांव की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी दुर्जन सिंह के नाम पर है। करीब करीब वो पूरे गांव को खरीदने जा रहा है और गांव के लोगों को आधी जमीनों को आधे दाम पर खरीदकर उन्हें शहर में काम देने के लालच से भेज देता है और उनके अंगूठे लगवा लेता है। आहान ने जैसे ही बिल्कुल सीरियस टोन में ये बातें कहीं, अरमान ने अपने दो उंगली उठाकर अपने माथे पर दो बार टेप किया। अरमान के चेहरे पर एक बड़ी ही खतरनाक मुस्कुराहट थी। अरमान की मुस्कुराहट देखकर ध्रुव, आकाश, सुमित साथ साथ आहान की रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई थी, क्योंकि अरमान जब भी इस तरह से मुस्कुराता था तब अरमान की मुस्कुराहट के पीछे बड़े ही खतरनाक राज हुआ करते थे। वो कब क्या कर देता था किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं हुआ करता था। वो जल्द ही अरमान बिना उनसे कुछ कहे वहां से चला गया। तभी आकाश ने सुमित की ओर देखकर अचानक अपनी आंखें हैरानी से फैला दी, क्योंकि सुमित के गर्दन पर साथ साथ उसके गालों पर रेड मार्क्स बने हुए थे, क्योंकि सुमित राधिका के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद उसे उसी हालत में छोड़कर तुरंत उसके कमरे से निकल गया था। हालांकि बाद में वो बहुत पछताया कि उसे ये क्या हो गया, उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आकाश ने सुमित को चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ सुमित, ये तुम्हारी गर्दन पर और गाल पर क्या हो गया है, क्या तुम्हें किसी मच्छर ने काट लिया है? आकाश, जो कि उन निशानों को देखकर समझ चुका था कि ये किस तरह के निशान है, सुमित को चिढ़ाते हुए ये कहा। सुमित अपनी आंखें चुराने लगा। आहान और ध्रुव मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गए, क्योंकि आकाश और सुमित दोनों ही अपने बड़े भाइयों के जैसा समझते थे और इस तरह से उनकी प्राइवेट बातों में वो नहीं घुसना चाहते थे। आहान ध्रुव की ओर देखकर बोला, अगर सुमित भैया राधिका दीदी को इतना ही प्यार करते हैं तो फिर सीधे सीधे उन्हें सबके सामने एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं, हमारे सामने इस तरह से तीस मार खान क्यों बने रहते हैं? आहान ने मुंह बिचकाकर ये पूछा। ध्रुव ने तुरंत उसे कोहनी मारी और धमकाते हुए बोला, जस्ट शट अप, तू अपने छोटे से दिमाग कम चलाया कर और ये बता, अगर तू रौनक से प्यार करता है तो तू एक बार फिर उसे शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं करता, हो सकता है रौनक इस बार शादी के लिए मान जाए? ध्रुव ने आहान को कोहनी मारकर ये पूछा। आहान ध्रुव को घूर कर बोला, ये क्या तू मुझे बात बात पर कोहनी मारता रहता है, किसी दिन तू मेरा पेट फोड़ देगा क्या, मुझे दिखाई दे रहा है? और एक बात तो शादी की, हाँ बस एक बार उसे अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूं, फिर मैं थोड़े ही ना आकाश सुमित भाई की तरह शर्माऊंगा या फिर अपने रिश्ते को छुपा लूंगा, मैं तो अगले ही पल तुरंत रौनक से शादी कर लूंगा और बेकार की किसी और झंझट में भी नहीं पढ़ूंगा, सीधे सीधे उसे शादी के लिए प्रपोज करके मंदिर में शादी करके आ जाऊंगा और घर जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले लूंगा। शादी का जिक्र आते ही आहान ने एकदम से अपना उतावलापन दिखाया। ध्रुव की हालत ऐसी हो गई कि वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। आहान वहां से गायब हो गया। वो समझ गया कि ध्रुव उसकी बात को मजाक में ले रहा था। वहीं दूसरी ओर अविनाश इस वक्त अपना कुछ जरूरी काम कर रहा था, लेकिन एंजल बिना किसी नोकझोंक के उसके कमरे में चली आती है। एंजल को वहां देखकर अविनाश ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसे घूर कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था कि जब कुछ ज्यादा ही जरूरी काम हो तभी मेरे कमरे में आ सकती हो और तुम इस तरह से मेरे कमरे में बार बार नहीं आ सकती हो, क्योंकि अभी जब से अविनाश गांव में शिफ्ट हुआ था एंजल कितने ही बहाने से अविनाश के कमरे में आने की कोशिश कर चुकी थी,
और अविनाश ने स्टे अवे फ्रॉम मी बोलकर उसे खुद से दूर रहने के लिए बोल दिया था। लेकिन अब अचानक एंजल के उसके कमरे में आने पर वो थोड़ा गुस्सा हो गया था, लेकिन एंजल ने उसकी किसी बात का बुरा नहीं माना। आगे बढ़कर उसने अविनाश को अचानक से गले से लगा लिया और उसके सीने पर अपना सर रखकर रोने लगी। एंजल को अपना इतना करीब पाकर अविनाश के हार्मोनियम सिस्टम थोड़े से बिगड़ गए थे और वो हैरान हो गया कि अचानक से इस लड़की को क्या हुआ है। कहां तो वो अविनाश के एक हुक्म पर पूरा दिन खड़ी होकर गुजार देती थी, लेकिन आज उससे आकर इस तरह से क्यों चिपक रही है। वहीं एंजल रोते हुए बोली, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं मानती हूँ डिम्पल मेरी कजिन है, लेकिन मुझे क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ घूमने फिरने के लिए आपने ही तो मुझे छुट्टी दी थी, तो फिर आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 5 सालों से आपके साथ काम कर रही हूँ, क्या आपको मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? एंजल के गले लगकर इस तरह की बातें करना शुरू करने पर ये बातें किसी और ने भी सुन ली थी। वो कोई और नहीं बल्कि आस्था थी। आस्था जो कि अविनाश के साथ थोड़ी देर अपने बचपन के साथ साथ अपने दादाजी के बारे में बातें करने के लिए आ रही थी। उसने अविनाश और एंजल को साथ देखकर वो दरवाजे पर रुक गई और अविनाश और एंजल की सारी बातें सुन ली। अविनाश गुस्से से एंजल को खुद से दूर करते हुए बोला, देखो इस तरह से रोने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक मेरी बहन तुम्हें क्लीन चिट नहीं दे देती है, तब तक मैं भी तुम्हें क्लीन चिट नहीं दूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम पिछले 5 सालों से मेरे साथ काम कर रही हो और आज तक तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे मुझे तुमसे कभी भी किसी तरह की कोई शिकायत का मौका मिला हो,
लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और अगर मेरी बहन ही तुम्हें पसंद नहीं कर रही है तो तुम मुझसे क्या उम्मीद रख सकती हो कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा? अविनाश के पसंद वाली बात बोलने पर एंजल की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो बोली कि आप क्या कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि मैं आपको पसंद? अविनाश उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है पिछले 5 सालों से तुम मेरे साथ काम कर रही हो तो क्या मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक नहीं करवाया होगा कि तुम कितनी अमीर हो, एकदम बिलियनेयर हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी कंपनी में आकर एक मामूली सी सेक्रेटरी की जॉब कर रही हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो और पहले दिन से मुझे पसंद करती हो। अविनाश के ये कहने पर एंजल तो पूरी तरह से चौंक गई थी। आस्था इस वक्त कश्मकश का शिकार हो गई थी, क्योंकि वाकई एंजल की तो कोई गलती नहीं थी, गलती डिम्पल की थी। और ऐसी बात नहीं थी कि आस्था ने डिम्पल से मिलने की कोशिश नहीं की थी। रौनक के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने उससे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन अरमान ने उसे सख्ती से मना कर दिया था और कहा था कि इस वक्त डिम्पल पुलिस के पास अरेस्टेड है, जो जेल में बंद है, तो उसे तुम नहीं मिल सकती हो। कहीं ना कहीं आस्था को सुकून मिला था कि चलो डिम्पल को उसके किए की सजा मिल गई, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसके पति ने उसे अरेस्ट करवा दिया है। लेकिन आस्था ने जो एंजल के साथ रूखा व्यवहार किया था, आज आस्था को थोड़ा सा गिल्ट महसूस हो रहा था कि एंजल 5 सालों से उसके भाई से प्यार करती है, लेकिन अब आस्था की वजह से उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। आस्था बिना कुछ उन्हें कहे सीधा वहां से बाहर निकल गई। आस्था सीधा नानी माँ के पास जाकर बैठी, उनका हाथ पकड़कर अपने मन की सारी बातें उनसे कहने लगी। हमने नहीं सोचा था कि इस तरह से बात बिगड़ जाएगी। हमें तो लगा कि रौनक के साथ जो कुछ हुआ, शायद उसमें वो लड़की एंजल भी शामिल है, लेकिन आज हमें इस बात का पता चला कि वो लड़की ही तो पिछले 5 सालों से अविनाश भैया से प्यार करती है। ये हमने क्या कर दिया नानी माँ, हमें इस तरह से उन दोनों के बीच में दूरियां नहीं लानी चाहिए थी। नानी माँ आस्था की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी, उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि वो अपनी नातिन के मन का दुख समझ रही हैं। तभी आस्था को एहसास हुआ मानो कि नानी माँ ने धीरे से आस्था का हाथ दबाते हुए कहा, बेकी अगर गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित भी तुम्हें ही करना होगा, प्यार कोई खेल नहीं होता, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने दो दिलों के बीच गलतफहमी पैदा की है तो उस गलतफहमी को दूर करना भी तुम्हारा फर्ज है। आस्था की आंखों में आंसू आ गए, वो कुछ देर तक चुप रही और फिर उठ खड़ी हुई, क्योंकि नानी माँ को उसने केवल अज्यूम किया था। नानी माँ तो खाली खाली आंखों से अभी भी छत को ही देख रही थी, फिर भी आस्था नानी माँ की ओर देखकर बोली थी, नानी माँ मैं अब और देर नहीं करना चाहती, मुझे एंजल से बात करनी ही होगी। ये बोलकर आस्था नानी माँ से एक बार फिर से बातें करने लगी थी। दूसरी ओर एंजल अविनाश के कमरे से निकल चुकी थी। अविनाश के सामने अपने जज्बात खोलने के बाद भी जब उसे कोई उम्मीद नहीं मिली तो वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने घर के पुराने गार्डन में जाकर खुद को अकेला कर लिया। उसके पास उसका फोन था, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसे अब लग रहा था कि 5 साल की उसकी मेहनत, उसका प्यार, सब कुछ बेकार चला गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उसके कानों में अविनाश की बातें गूंज रही थीं। अगर मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती तो मैं भी तुम्हें नहीं पसंद कर सकता। कहीं ना कहीं इस वक्त एंजल के दिमाग में अविनाश की कही हुई बातें ही गूंज रही थीं और उसने ठान लिया था कि अगर अविनाश उसे पसंद ही नहीं करता है तो उसका यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है।
वो इस तरह से अपने आप को अविनाश पर थोप नहीं सकती है। वैसे भी वो कोई गवार नहीं थी, अविनाश की ही तरह एक बहुत बड़े बिलियनर की बेटी थी, इनफैक्ट उसकी वारिस भी थी। लेकिन अविनाश के प्यार के चक्कर में वो पिछले 5 सालों से एक मामूली सी सेक्रेटरी बनकर उसके साथ रह रही थी, सिर्फ और सिर्फ अविनाश के प्यार के लिए। लेकिन आज जिस तरह से अविनाश ने उससे बातें की, एंजल को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गहरा दुख पहुंचा था। और कहीं ना कहीं एंजल ने मन ही मन सोच लिया था कि उसे अब और ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और उसे यहाँ से अब जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। उधर अविनाश अपने कमरे में टहल रहा था। उसके मन में हलचल थी, एक तरफ बहन की नाराजगी, दूसरी तरफ एंजल की आंखों में सच्चाई और मासूमियत। क्या मैं सच में गलत कर रहा हूँ, उसने खुद से पूछा। लेकिन कहीं ना कहीं आस्था को नाराज नहीं कर सकता था। अविनाश के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि आस्था एंजल को पसंद नहीं करती है, हालांकि मन ही मन में अविनाश एंजल को पसंद करता था। इनफैक्ट उसे ये बात बहुत पहले से पता थी कि पिछले 5 सालों से जो उसकी सेक्रेटरी बनकर रह रही है वो कोई आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस वक्त वो अपने प्यार का इजहार एंजल से नहीं कर सकता था क्योंकि उसने आस्था को नहीं ढूंढा था। तो अब जब आस्था उसके करीब है, लेकिन आस्था की नाराजगी की वजह से वो एंजल को अपना भी नहीं पा रहा था। इस वक्त उसके दिलो दिमाग में एक अजीब ही तरह की जंग चल रही थी। वहीं आस्था नानी माँ से अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी।